परम पूजनीय डॉक्टर केशव बलिराम हेड़गेवार, जन्मजात देशभक्त थे, समकालीन सभी कार्यों में, संस्थाओं में, आंदोलनों में उन्होंने हिस्सा लिया था। देशी और विदेशी ज्ञान उनको था और हम जानते हैं कि 1925 विजयादशमी के अवसर पर उन्होंने संघ की स्थापना की। किंतु उनके महानिर्वाण के पश्चात बंगाल के क्रांतिकारी अनुशीलन समिति के एक ज्येष्ठ नेता श्री त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती जी महाराज, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि संघ की स्थापना 1925 में हुई है, ठीक है, किंतु मैं जानता हूं कि इस तरह का कोई न कोई कार्य आवश्यक है। ऐसा विचार डॉक्टर जी के मन में बहुत पहले से था। त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती महाराज जी ने कहा कि डॉक्टर जी क्रांति कार्य के लिए जब बंगाल में आए थे तो 1916 में मेरे पास आए और कहा कि महाराज जी हम स्वराज्य प्राप्ति के लिए तरह तरह के काम कर रहे हैं, ठीक ही है, किंतु हमारे राजनीतिक नेता जो कहते हैं कि एक बार राज्य हाथ में आया तो समस्याएं हल हो जाएगी, मानो राज्य यानी अलादीन का दिया है, ऐसी मान्यता है कि जिसके हाथ में अलादीन का दिया रहेगा उसके मन की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। तो एक बार स्वराज्य हाथ में आया तो हमारी सारी इच्छाएं पूरी होगी, सारी समस्याएं हल हो जाएगी, ऐसा जो कहते हैं यह मुझे जचता नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि केवल स्वराज्य प्राप्ति से समस्याएं हल नहीं होगी, प्रगति का मार्ग सुकर नहीं होगा जब तक हिंदुस्तान का हर एक नागरिक राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत नहीं है और ऐसे नागरिकों के संगठन जब तक खड़ा नहीं होता तब तक देश के लिए कोई भविष्य की आशा नहीं। ऐसी बात 1916 में डॉक्टर जी ने मुझे कही थी। मतलब है कि 1916 के पहले से उनके मन में ये सारे विचार चल रहे थे। तो जन्मजात देशभक्त, विविध आंदोलन का प्रत्यक्ष अनुभव, वे विविध विचारधाराओं की सम्यक जानकारी, उसके साथ साथ कई वर्षों से गहन चिंतन चल रहा था। कुछ कमी है, कैसे दूर किया जाए, और इस गहन चिंतन के परिणति के रूप में 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। उनका चिंतन गहन था, मूलगामी था, दूरगामी था, और 1925 के बाद जो जो हम संघ परिवार इनका जो विकास देख रहे हैं यह सारा उनके दृष्टि में पहले से था, पहले से उन्होंने ध्येय निश्चित किया था कि अपने राष्ट्र का परम वैभव वहां तक कैसे पहुंचना, उसके लिए मार्ग क्या है, यह भी सोचा था। शुरू से लेकर आखिर तक क्या क्या परिस्थितियां आ सकती है, तरह तरह के अल्टरनेटिव विकल्प आ सकते हैं, उस समय क्या करना है नहीं करना, पूरा विचार उनका था। और उसके पश्चात संघ की स्थापना हुई। ऐसा नहीं हुआ कि कहीं अखबार में पढ़ लिया, कहीं दंगा हुआ और इसलिए आवेश में आकर संघ की स्थापना हुई, ऐसा नहीं हुआ। गाना दूरगामी दूरगामी चिंतन के फलस्वरूप संघ का प्रारंभ हुआ है। कितना दूरगामी विचार होगा इसका एक ही उदाहरण मैं देना चाहता हूं। १९२० में नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उस समय पूजनीय डॉक्टर जी स्वयं सैनिक दल के प्रमुख थे कांग्रेस के, ये तो सब लोग जानते हैं। लेकिन दूसरी एक बात ज्यादा लोगों को मालूम नहीं कि स्वागत समिति के सक्रिय सदस्य इस नाते उन्होंने एआईसीसी को एक प्रस्ताव भेजा था। प्रस्ताव का ड्राफ्टिंग डॉक्टर जी का था और उसमें ऐसा लिखा था कि इस समय कांग्रेस अधिवेशन ने कांग्रेस का ध्येय निश्चित करना चाहिए, पानी मंगा लीजिए ना, कांग्रेस का ध्येय निश्चित करना चाहिए, बहुत विविध होना चाहिए। डॉक्टर जी ने लिखा था कि यह विविध ध्येय क्या हो, नंबर एक, भारत को स्वतंत्र करते हुए उसमें गणतंत्र की स्थापना और विश्व के सभी देशों को पूंजीवाद के चंगुल से मुक्त करना, यह दूसरा। अब यह दूसरे बात की विशेषता लोगों के ख्याल में नहीं आती। 1920 में डॉक्टर जी का यह ड्राफ्टिंग है कि विश्व के सभी देशों को पूंजीवाद के चंगुल से मुक्त करना। मैं 1920 का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं, बहुत लोग इसका लिंकिंग नहीं कर सकते। 1917 में अक्टूबर नवंबर में रूस में कम्युनिस्ट क्रांति हुई थी। उस कम्युनिस्ट क्रांति के पश्चात हिंदुस्तान के सभी नेता ऐसा सोचने लगे थे कि दुनिया से कैपिटलिज्म को हटाने का काम कम्युनिज्म करेगा। जो तत्वज्ञान दृष्टि से कम्युनिस्ट नहीं भी थे, सभी नेताओं की यह धारणा थी। लाला लजपत राय से लेकर नेहरू तक, पुराने नए सब नेता यह सोचते थे कि कैपिटलिज्म को नष्ट करने का काम कम्युनिज्म करेगा। इस बैकग्राउंड पर 1920 में जो डॉक्टर जी ने लिखा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यह घोषित करना चाहिए कि विश्व के सभी देशों को पूंजीवाद के चंगुल से मुक्त करना, इसका महत्व है। इसका मतलब है कि अन्य नेताओं के समान डॉक्टर जी ऐसा नहीं मानते थे कि कम्युनिज्म कैपिटलिज्म को नष्ट करेगा, और अंततोगत्वा कैपिटलिज्म को नष्ट करने का काम भारत ने ही करना है, ये उनकी 1920 में धारणा थी। और आज हम देखते हैं कैनकुन कॉन्फ्रेंस के पश्चात डॉक्टर जी किस तरह दृष्टा थे, इसका अनुभव हम कर रहे हैं। विकसित गोरे देश डेवलप्ड कंट्रीज बाकी सभी विश्व को कैपिटलिज्म के एक चक्कर में डालना चाहते थे। कैनकुन में फॉर द फर्स्ट टाइम सफलतापूर्वक उसका विरोध हुआ, उसका नेतृत्व भारत ने किया था। यह जब हम पढ़ते हैं तो कितनी दूरदृष्टि डॉक्टर जी की थी इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। पूरा विचार किया था किंतु बोला नहीं था, क्योंकि आज की जो फैशन है, 10 लोग एक कमरे में इकट्ठे आते हैं, ऑल इंडिया पार्टी की स्थापना करते हैं, उसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष वगैरह सब निर्वाचित करते हैं, फिर घोषणा पत्र तैयार करते हैं, हम देश में और दुनिया में क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं ये सारा घोषणा पत्र में लिखा रहता है, उसी दिन वो अखबार में प्रकाशित भी होता है। डॉक्टर जी की स्टाइल अलग थी, रघुवंश के राजाओं के बारे में कालिदास ने ऐसा कहा है, फलानुमेया प्रारंभः, किसी बात का किसी प्रोजेक्ट का प्रारंभ किया है रघुवंश के राजा ने, इसका पता तब लगता था जब उसका फल आता था, जब वो कार्य अच्छा होने लगता था तब पता चलता था कि कार्य का प्रारंभ हुआ। क्योंकि फल आया है तो कभी न कभी बीजारोपण हुआ होगा, इस तरह का अनुमान लगाना, वही बात परम पूज्य डॉक्टर जी की थी। उन्होंने पूरा विचार किया लेकिन ऐसा बताया नहीं कि क्या क्या है, किंतु जो आज हम विकास देखते हैं, संघ है, संघ के स्वयंसेवक विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित कर रहे हैं, विदेश में भी हिंदू स्वयंसेवक संघ के नाम से कई देशों में शाखा चलती है, विश्व हिंदू परिषद है, ये सारा जो विकास हो रहा, तो इसको वास्तव में इवोल्यूशन यह नहीं कहा जा सकता। इवोल्यूशन का मतलब होता है कि पहले एक चीज है और फिर परिस्थिति के कारण और बातें कुछ निर्माण हुई, ऐसा नहीं, इवोल्यूशन नहीं था। तो डॉक्टर जी का जो ओरिजिनल विजन था, परम वैभवम यह ध्येय रखते हुए जो उनका ओरिजिनल विजन था, उसी विजन का यह प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट है, यह थोड़ा हम ध्यान में रखें। प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट इसका मतलब यह होता है कि धीरे धीरे उत्तरोत्तर प्रस्फुटित होना, चीज वही रहती है, कोई नई चीज उसमें एडिशन नहीं होती, क्योंकि सब लोगों के सामने आती नहीं, धीरे धीरे जैसा पर्दा हटता है ज्यादा और ज्यादा हिस्सा उत्तरोत्तर हमारे दृष्टि में आता है। तो प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट यह हो रहा, यह ध्यान में रखें। और इस दृष्टि से पूरी रचना जो है, कुछ लोग इसको संघ परिवार कहते हैं, संघ परिवार गलत शब्द है, किंतु यह जो सारी रचना है, इस रचना का विचार करना चाहिए। ১৯৬০ में मैं बेंगलोर गया था, वहां कार्यालय में ठहरा था, वहां एक अपने बड़े पुराने कार्यकर्ता स्वयंसेवक अच्छे ज्योतिषी भी है, उनका नाम है K.N. कृष्णमूर्ति, अब वो नहीं है, वो मुझे मिलने आए। तो उन्होंने कहा कि आप डॉक्टर जी के समय से स्वयंसेवक है ऐसा सुना, इसलिए मैं आपकी सहायता चाहता हूं। उन्होंने क्या है, तो उन्होंने कहा कि संघ और जो विभिन्न संस्थाएं तब तक विद्यार्थी परिषद, जनसंघ, मजदूर संघ, इसकी स्थापना हो चुकी थी, तो बोले इनकी मैं जन्म कुंडली बनाना चाहता हूं, जन्म पत्रिका, तो मैं आपकी सहायता चाहता हूं, मुझे ये बताइए कि संघ की स्थापना कब हुई। मैंने कहा भी सब जानते हैं विजयादशमी 1925। कृष्णमूर्ति ने कहा कि इससे ज्योतिष की कुंडली नहीं बन सकती, संस्था के स्थापना का विचार संस्थापक के मन में कब आया, वो क्षण, उसके आधार पर हम कुंडली बना सकते हैं। तो ये कब आया? उन्हें कहा, भाई मैं इतना जानता हूँ कि विद्यार्थी परिषद की स्थापना 9 जुलाई 1949 को हुई, भारतीय जनसंघ की स्थापना 21 अक्टूबर 1951 में हुई, भारतीय मजदूर संघ की स्थापना 23 जुलाई 1955 में हुई, इतना तो जानता हूँ, लेकिन स्थापना का विचार मन में कब आया इसके बारे में मैं नहीं बता सकता। तो डॉक्टर जी के मन में 1916 के पूर्व से ही यह ध्येय सामने रखकर कि परम वैभवम तक जाना है, जो एक विजन था उसी का प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट अभी हो रहा है। भारतीय मजदूर संघ उसी का एक हिस्सा है। शुरू से संघ ने यह कहा कि संघ केवल संगठन करेगा और कुछ नहीं करेगा। ऑर्गेनाइजेशन इज अवर बिगिनिंग, ऑर्गेनाइजेशन अवर एंड। लोग पूछने लगे, अरे आपने ध्येय तो बहुत बड़ा रखा है राष्ट्र का परम वैभव, और आप कह रहे हैं कि दक्ष आरम दंड खड़ग शूल कबड्डी, इसके अलावा और आप कुछ नहीं और करेंगे, तो यह जो ध्येय है वह कैसे प्राप्त होगा? क्योंकि परम वैभवम के लिए राष्ट्र जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य की आवश्यकता है, विचारों का विकास आवश्यक है, यह कौन करेगा? तो पहले से डॉक्टर जी ने सोचा था कि संघ का संगठन जब प्राथमिक अच्छा तैयार होगा तो उसके बाद राष्ट्र जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में संघ के स्वयंसेवक, संघ के माध्यम से प्रेरणा और संस्कार प्राप्त किए हुए संघ के स्वयंसेवक व्यक्तिगत कैपेसिटी में, संघ के नाते नहीं, व्यक्तिगत कैपेसिटी में राष्ट्र निर्माण कार्य के लिए आवश्यक विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश करेंगे, अपने रुचि प्रकृति प्रवृत्ति के अनुसार प्रवेश करेंगे और वहाँ राष्ट्र के लिए उपयुक्त कार्यों की रचना और विचार का विकास करेंगे। इस तरह से मानो संघ और स्वयंसेवकों में एक श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर, के संघ ने स्वयंसेवकों का निर्माण करना और व्यक्तिगत कैपेसिटी में स्वयंसेवकों ने विविध राष्ट्रोपयोगी कार्य खड़े करना, इस तरह का श्रम विभाजन पहले से सोचा गया था। और इस तरह से श्रम विभाजन सोचते हुए यह भी पहले से यह तय था कि विभिन्न क्षेत्रों में ठीक ढंग से काम चले इसके लिए कौन सी परहेज, कौन से पथ्य पालन करना आवश्यक है, यह भी पहले से तय हुआ था। 1952 नवंबर में थाना में संघ की जब अखिल भारतीय बैठक हुई, उस समय पूजनीय श्री गुरु जी ने विस्तृत ढंग से यह बात बताई कि अलग अलग क्षेत्रों में हमारे स्वयंसेवक जाएंगे व्यक्तिगत कैपेसिटी में, वहां कुछ पथ्यों का पालन करना पड़ेगा, अपने अपने क्षेत्र में जो कार्य खड़ा करना है, विचारों का विकास करना है, वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सिद्धांतों आदर्शों के प्रकाश में ही होना चाहिए। नंबर दो, संघ ने हमें आपसी व्यवहार की जो रीति नीति पद्धति जीवन मूल्य वायुमंडल सिखाया है, वही रीति नीति पद्धति जीवन मूल्य वायुमंडल हम जिस क्षेत्र में जाएंगे वहां प्रस्थापित करना है, और फिर हम ऐसा दावा करते हैं कि संघ स्थान पर मनुष्य का मन संस्कारित होता है। किंतु यह आधी साधा अर्ध सत्य है। समय स्थान पर मन संस्कारित होता है, ये ठीक है, लेकिन दूसरी एक बात है जो लोग भूल जाते हैं। गुरु जी ने पीतल के बर्तन का उदाहरण दिया कि पीतल का बर्तन यदि आप घिसते हैं तो वह चकचक हो जाता है, आप अपना चेहरा उसमें देख सकते हैं। मानो 40 साल तक आपने पीतल का बर्तन अच्छा चकचक किया, अपना चेहरा देख लिया, फिर सोचा अरे भाई 40 साल तक हमने इसको घिसा है, अब एक महीने के लिए अलमीरा में रख देंगे। तो कहते थे कि एक महीना आंदोलन वहां रखेंगे तो एक महीने की क्या बात है, तीसरे दिन ही वो गंदा हो जाता है। माने घिसने के कारण उसमें अपना चेहरा हम देख सकते, यह भी सत्य है, किंतु साथ ही साथ दो दिन यदि उसको नहीं घिसा तो वो मलिन हो जाता है, यह भी सत्य है। वैसे ही संगत स्थान पर संस्कार होते यह सत्य है, लेकिन यदि हर दिन संगत स्थान पर उपस्थित न रहे, घिसने का काम हर दिन नहीं चला, तो संस्कार मलिन हो जाते हैं, और ऐसे मलिन संस्कारों के लिए संग जिम्मेवार नहीं है। जो हर दिन संग स्थान पर नहीं आता वही उसके लिए जिम्मेवार है। यह त्रिविध पथ्य, तीन तरह के परहेज श्री गुरु जी ने बताई थी। अब अपना कार्य प्रारंभ हुआ। मैंने कहा कि यह प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट है। किसी ने पूछा भाई भारतीय मजदूर संघ की स्थापना कब हुई, हम कहते 23 जुलाई 1955 को हुई। किंतु जैसे पूछा गया कि इसके प्रारंभ का विचार, ये शुरू करना चाहिए, ये विचार कब से आया, तो 1916 के पहले से जो गहन विचार चिंतन, दूरगामी विचार चिंतन चल रहा था, उसी का फल प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट, उसमें का एक हिस्सा यानी भारतीय मजदूर संघ है, एक स्वतंत्र विभाग नहीं है, तो उसी का एक हिस्सा, डॉक्टर जी के विजन का एक हिस्सा यानी भारतीय मजदूर संघ है। अब 1949 में मुझे इंटक की ओर से बुलाया गया कि आप हमारे इंटक का काम कीजिए। उस समय मैं विद्यार्थी परिषद का प्रेसिडेंट था विदर्भ नागपुर का। मैंने गुरु जी से पूछा, हमने कहा कि ऐसा ऐसा निमंत्रण इंटक के अध्यक्ष पीवाई देशपांडे ने मुझे दिया है, क्या करना है, और तुम्हारी क्या इच्छा है। मैंने कहा ये सब हमको गाली देने वाले लोग हैं, है गांधी हत्यारे, है नाथुराम गोडसे, है करके गाली देने वाले, इनके समूह में जाकर मैं नहीं रहना चाहता। गुरुजी ने कहा कि तुम्हें सब विचार करते हो क्या, क्यों, बोले जाओ उनको बताओ कि मैं इंटक में काम करने के लिए तैयार हूं, रहो इंटक में। फिर कम्युनिस्ट यूनियन में भी हमने काम करना चाहिए, उनका आग्रह था, तो पीएनटी और बैंकिंग दो उद्योगों में सेंट्रल लेवल पर मैंने काम किया। गुरु जी की प्रेरणा थी, इस तरह के सभी संस्थाओं का प्रत्यक्ष अनुभव लो, तो हैंडलूम वीवर्स कांग्रेस अखिल भारतीय, जिसके अखिल भारतीय अध्यक्ष कोंडा लक्ष्मण बापू जी थे, राबा कुंभारे नागपुर के जनरल सेक्रेटरी थे, 2 साल तक लीगल एडवाइजर के नाते काम किया, तरह तरह के संस्थाओं में काम करने का आदेश था, वैसा कुछ किया। किंतु गुरु जी के मन में यह बात पहले से थी, यह हम लोग नहीं जानते थे। गुरु जी ने कहा कि अपना कोई आदमी विभिन्न ट्रेड यूनियन में जाए, वहां का काम कैसा चलता है, लोगों का स्वभाव क्या है, कार्य पद्धति क्या है, जरा सीख ले, यह उनके मन में था, यह हम जानते नहीं थे। मुझे स्मरण होता है कि जिस समय हमारा 61वां वर्धापन दिन हुआ, उसके बाद तो हमने वर्धापन दिन बंद कर दिया। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ नियम है कि किसी भी नेता की जय जयकार न हो और किसी का भी जन्मदिन मनाया ना जाए, किंतु उस समय वो मनाया गया था। तो बंबई में रमन भाई शाह और मनोहर भाई मेहता ने ऐसा सोचा कि महाराष्ट्र टाइम्स में उसी दिन जब हमारा सत्कार होगा थैली दी जाएगी, उसी दिन महाराष्ट्र टाइम्स ने हमारे बारे में कुछ लिखना चाहिए। तो बंडोपंत गोखले करके महाराष्ट्र टाइम्स के थे उपसंपादक, उनको बताया। उन्होंने कहा कि बोले संघ के लोगों का कुछ बातें ही नहीं बोले, ये लिखना फजूल है। उन्होंने कहा नहीं, अब तो उनको बुलाया गया नवयुग कार्यालय में। मनोहर भाई रमन भाई दोनों थे, बाकी वहाँ के लोग थे, मैं था। उन्होंने शुरू से प्रश्न किए क्योंकि उनको मेरे बारे में लिखना था। होते होते मैं संघ का प्रचारक बंगाल से वापिस आया, यहाँ तक आया। फिर उन्होंने एक प्रश्न किया, इतने साल तक आप संघ के प्रचारक के नाते काम कर रहे थे, मजदूर क्षेत्र में प्रवेश करने की आपको इच्छा क्यों हुई? मैंने कहा हमारी इच्छा कुछ नहीं थी, गुरुजी ने कहा मैं चला गया। ऐसे गुस्सा हो गए। उन्होंने रमन भाई मनोहर भाई की तरफ देखा, बोले देखो मैं बोल रहा था कि ऐसा ही कुछ तभी जवाब देंगे। किसी सोशलिस्ट नेता को यदि हमने पूछा होता कि मजदूर क्षेत्र में काम करने की प्रेरणा आपको कैसे हुई, बोले उसने ऐसा रसभरित वर्णन किया होता कि मैं फलाने जगह गया था, ऐसा करुण दृश्य देखा, मेरा हृदय द्रवित हो गया, इसके कारण मैंने ऐसा निश्चय किया मैं काम करूंगा मजदूर क्षेत्र में। बोले उससे स्टोरी बनती है। अब ये जो बता रहे कि गुरुजी ने बोला मैं चला गया, इससे मैं स्टोरी क्या बनाऊं? और उस समय बंडोपंत गोखले ने कहा कि आरएसएस हैज रेज्ड मेनी ग्रेट पर्सनैलिटीज बट मेड देम ऑल फेसलेस। तो इस तरह की यह जो व्यवस्था है, अब इंटेक में प्रवेश करने के पश्चात तरह तरह के अनुभव आए। गुरुजी ने यह बताया कि भाई विभिन्न संस्थाओं में जाओगे, उनके अनुशासन के अंदर रहना है, और यदि कोई बात तुमको नहीं जचती, मिनट गोज अगेंस्ट योर ग्रेन, तो अनुशासनहीनता मत करो, रिजाइन करो, बाहर चले जाओ, फिर अपने वक्तव्य दो, बाकी करो। किंतु अंदर रहते हुए अनुशासनहीनता किसी भी संस्था में अपना कार्यकर्ता न करे, यह पहले से आदेश था। 1955 में भारतीय मजदूर संघ की स्थापना हुई। उसके प्रारंभ से ही इसका स्वरूप डेमोक्रेटिक रहना चाहिए, यह आग्रह था। मजदूर संघ के स्थापना के पूर्व 4 सेंट्रल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी बड़ी हिंदुस्तान में चल रही थी, AITUC, INTUC, HMS, UTUC। उनके पास बड़े बड़े दफ्तर थे, बड़े बड़े कोष थे, कार्यकर्ता थे। और जिस समय भारतीय मजदूर संघ की स्थापना हुई उस समय हमारे पास एक भी कार्यकर्ता नहीं था, एक पैसा भी कोष के नाते नहीं था, एक भी यूनियन नहीं थी, एक भी सदस्य नहीं था। और 23 जुलाई 1955 को घोषणा हुई कि एक नई सेंट्रल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण आज हो रहा है। यह ऐसा ही था जैसे हमारे कॉमरेड वर्धन ने हमको कहा कि तुम्हारे पास कुछ नहीं और तुम ऑल इंडिया बॉडी बनाने जा रहे हो। यह तो ऐसा ही है कि जैसे कोई भिखारी यह सोचे कि दूर के किसी मोहल्ले में बादशाह के बेटी की शादी है, मैं वहां जाऊंगा, बादशाह के बेटी से शादी करूंगा, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए रिक्शा को देने के लिए आठ आना भी उसके जेब में नहीं है, वैसी तुम्हारी हालत है। हमने कहा ये बात बिल्कुल सही है। शुरू में क्या क्या कठिनाइयां आई हम सब लोग जानते हैं। केवल स्टेटमेंटबाजी से भाषणों से काम नहीं बढ़ा। शुरू में यह हालत थी कि जहां कहीं हम यूनियन का रजिस्ट्रेशन के लिए 7 लोगों के सिग्नेचर भेजते थे, वो 7 लोग या तो सस्पेंड होते थे या डिसमिस होते थे। तो हमारे अच्छे अच्छे मित्र भी कहते थे कि दत्तोबन हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आदर करते हैं, आप हमारे यहाँ आइए, हम आपको चाय पिलाएंगे, पूरण पोली का श्रीखंड का भोजन दे सकते हैं, लेकिन यूनियन की बात मत कीजिए, क्योंकि यूनियन यानी विक्टिमाइजेशन, ये उस समय बिल्कुल तय था। ऐसे समय कुछ थोड़े ध्येयवादी लोग जो जानबूझकर विक्टिमाइज होने के लिए तैयार थे ऐसे सामने आए और उनके आधार पर कार्य बढ़ा। केवल स्टेटमेंटबाजी पर आधार पर नहीं बढ़ा। 1984 के अक्टूबर में अंत में जिस समय अखिल भारतीय अभ्यास वर्ग इंदौर में हुआ था तो हमने एक सत्र के शुरू में कहा, अरे कुछ नहीं, ऐसा है कि भारतीय मजदूर संघ का काम करने के कारण और भारतीय मजदूर संघ के लिए जो शहीद हुए, शहीद यानी जिन्होंने आत्म बलिदान किया, ऐसे लोगों के केवल नाम लिखवाना है, कहानी बताना नहीं है क्या हुआ कैसे हुआ कुछ नहीं। जो भारतीय मजदूर संघ के लिए शहीद हुए ऐसे लोगों के केवल नाम, यूनियन एड्रेस और केवल उनका एड्रेस, ऐसी 4 बातें बताना है। लोगों ने कहा कि 10-12 मिनट में हो जाएगा, यह केवल 4 बातें बताना और कुछ नहीं। ये काम 1 घंटा 20 मिनट तक चला। कानपुर के ईश्वर दयाल सक्सेना, वेरावल के दोस्त मोहम्मद, ऐसे 1 घंटा 20 मिनट तक यह काम चला। मैंने काम जो खड़ा हुआ है वह केवल पब्लिसिटी के आधार पर खड़ा नहीं हुआ जैसा लोग सोचते हैं, तो यह खून पसीने की दीव पर यह कार्य खड़ा हुआ है और कई लोगों ने इसमें अपना खून पसीना दिया है, इसके कारण यह कार्य बढ़ा हुआ है। कार्य शुरू हुआ उसी समय, इसका कारोबार डेमोक्रेटिकली चलता है इसका अनुभव आया। नागपुर से जब मैं भोपाल गया था तो कई कागजात लेकर गया था और जिसमें साइकिलिस्ट ने भारतीय श्रमिक संघ ऐसा लिखा था, तो स्पष्ट है कि भारतीय श्रमिक संघ ही नाम रखना हमारा विचार था। अब भोपाल में चर्चा हुई नाम क्या रहे, तो लोगों ने वो कागजात देखे थे इसलिए कहा कि भारतीय श्रमिक संघ आपके मन में है वही रखिए। मैं कहा ऐसा नहीं, लोगों की राय क्या है। तो पंजाब के 2 लोग खड़े हुए, उन्होंने कहा हम श्रमिक शब्द का उच्चारण भी नहीं कर सकते, पंजाब में हम कहेंगे भारतीय श्रमिक संघ, और यदि हम श्रमिक संघ कहते तो लोग हंसेंगे। तो बोले शुरू से ही हमारी माहौल लोग करेंगे तो श्रमिक शब्द हमको नहीं चलेगा। लोगों ने कहा चंगड़ी जी यहाँ तो अभी प्रारंभिक बैठक है, आप जो कहेंगे हम मान लेंगे। हमने कहा ऐसा नहीं। तो वहां मैं जानता था कि हावड़ा के कन्हैयालाल बनर्जी यह सबसे बूढ़े आदमी थे। मैंने कहा कि भाई निर्णय मैं नहीं करूंगा, इस बैठक में जो सबसे बूढ़े आदमी हो गए उनका निर्णय हम मान लेंगे। तो सबका ध्यान कन्हैया बाबू की तरफ गया। तो मेरी अपेक्षा थी कि बंगाल में श्रमिक शब्द चलता है, मजदूर शब्द इतना नहीं चलता, तो कन्हैया बाबू श्रमिक ही कहेंगे, किंतु हमारा अंदाजा गलत निकला। कन्हैया बाबू खड़े हुए, उन्होंने कहा कि हमारे बंगाल में श्रमिक शब्द ही चलता है, लेकिन चूंकि हमने अखिल भारतीय संस्था का निर्माण करना है तो हमारे पंजाब के भाइयों की जो कठिनाई है उसको भी ध्यान रखना चाहिए। और इसलिए मेरा निर्णय यह है कि मजदूर शब्द वहां लाया गया, मजदूर शब्द लाया गया। मैंने डेमोक्रेसी का प्रत्यक्ष परिचय स्थापना के समय से ही यहां हुआ, यह आपके ध्यान में आएगा। इसमें पूजनीय श्री गुरु जी ने सभी बातों में रस लिया, ध्वज कैसा रहे, ध्वज का रंग कैसा रहे, बोध चिन्ह क्या रहे, घोषणाएं कैसी रहे, सभी बातों में उन्होंने रस लिया। और इसके कारण जो हमारी सैद्धांतिक व्यावहारिक भूमिका तैयार हुई, इसका विवरण आगे किसी भाषण में अपने संगठन मंत्री आग्गी जी आपके सामने करने वाले हैं। तो सैद्धांतिक बातों की चर्चा मैं नहीं करूंगा, लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियां आई, मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहा। अभी एक सवाल खड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के कारण कि सरकारी कर्मचारी इनका स्ट्राइक करने का अधिकार नहीं रहना चाहिए। टू विड्रॉ द राइट टू स्ट्राइक ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ऐसी कुछ बात सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के कारण आई। लोग समझते हैं कि शायद यह पहला ही प्रसंग है, ऐसा नहीं है। पब्लिक मेमोरी शॉर्ट, लोग भूल जाते हैं। ऐसा ही अवसर 1960 जुलाई में आया था। 1960 जुलाई में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की संस्थाओं की हड़ताल हुई थी, और उसके बाद गुलजारीलाल नंदा होम मिनिस्टर और जयसुखलाल हाथी लेबर मिनिस्टर दोनों ने यह घोषणा की थी कि हम सरकारी कर्मचारियों का राइट टू स्ट्राइक, हड़ताल करने का अधिकार विड्रॉ करने वाले हैं, ऐसा स्टेटमेंट आया था। 1960 में सरकारी कर्मचारियों में हमारी एक भी यूनियन नहीं थी। गुरुजी ने मुझे पूछा, भाई ये जो होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया इसके बारे में तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया है? हमने कहा हम क्या प्रतिक्रिया देंगे, हमारी एक भी यूनियन नहीं है सरकारी क्षेत्र में। अरे बोले एक भी यूनियन नहीं होगी, लेकिन आगे यूनियंस बढ़ानी है ना। मैंने कहा हाँ। और फिर हमारे स्वयंसेवक विभिन्न सरकारी दफ्तरों में काम कर रहे हैं, उनको भी तो अभी से मालूम होना चाहिए कि ऐसे परिस्थिति में भारतीय मजदूर संघ का दृष्टिकोण क्या है। तो मैं चुपचाप रहा। तुमने कहा विचार करो विचार करो। शाखा के बाद जब घर जाकर जाने के लिए निकले तो मुझे कहा कि कागज और फाउंटेन पेन लेकर आओ। पूजनीय ताई के पास बैठने के लिए जाते थे, उन्होंने स्टेटमेंट स्वल्प विराम पूर्ण विराम अर्ध विराम इसके साथ उन्होंने स्वयं स्टेटमेंट डिक्टेट किया। स्टेटमेंट ये था, उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि आप स्टेटमेंट देंगे हम कौन छपेगा, हमारा तो काम ही नहीं है, 1960 की बात है। बोले और कोई नहीं छपेगा तो ऑर्गेनाइजर और पांचे जन ने तो छापने वाले हैं, उनके लिए वो स्टेटमेंट तो वो सबको मार्गदर्शक होगा। स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट का पहला हिस्सा ऐसा था कि हम नेशनलिस्ट है, प्रोडक्शन एंड सर्विसेज शुड नॉट बी हैम्पर्ड, यह हमारा आग्रह है। तो भी सरकार ने जो घोषणा की है कि राइट टू स्ट्राइक ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज विल बी विड्रॉन, यह अनडेमोक्रेटिक स्टेप है, इसके कारण हम इसका विरोध करेंगे। और फिर वाक्य था जो क्रक्स ऑफ द स्टेटमेंट था, वाक्य यह था इंस्टीड, माने इसके बजाय, इंस्टीड ऑफ विड्रॉइंग द राइट टू स्ट्राइक द गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस सम लीगल मैकेनिज्म विच वुड रेंडर द राइट टू स्ट्राइक ए सुपरफ्लूटी। माने राइट टू स्ट्राइक विड्रॉ करने के बजाय राइट टू स्ट्राइक की आवश्यकता ही महसूस न हो, इस तरह का कोई मैकेनिज्म, लीगल मैकेनिज्म सरकार ने देना चाहिए। आज भी लोग पूछते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आपका क्या विचार है, यही विचार है जो परम पूजनीय गुरु जी ने कहा था। लेकिन उस समय संघ के क्षेत्र में भी मजदूर क्षेत्र के और मजदूर संघ के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। जनरली इतना ही था कि भाई कम्युनिस्टों को दबाना है, इसके लिए हमने इनको भेजा है। लेकिन जब ये स्टेटमेंट ऑर्गेनाइजर पांचे जन्य में आया, उसके बाद हमारे प्रांत प्रचारकों की बैठक में एक सीनियर प्रचारक उठकर खड़े हुए। उन्होंने कहा कि गुरु जी, ऐसा लगता है कि हमने कम्युनिस्टों को दबाने के लिए इनको उस क्षेत्र में भेजा, किंतु चीप पॉपुलैरिटी, सस्ती लोकप्रियता के मोह में आकर अब दत्तोपंत भी ऐसे स्टेटमेंट देने लगे हैं, स्ट्राइक तो कम्युनिस्टों का काम है, अपना नहीं है। तो गुरु जी देख रहे थे, वास्तव में वो पूरा स्टेटमेंट गुरु जी का था, हमारे नाम पर आया। गुरु जी देख रहे थे मैं क्या बोलता हूँ। उनके आक्षेप का उत्तर देने के लिए यह पर्याप्त था कि गुरु जी ने दिया, क्योंकि ये तो उचित नहीं था। मैंने इतना ही कहा कि आप सीनियर प्रचारक हो, मैं जूनियर प्रचारक हूँ, एज ए सीनियर प्रचारक यदि आपको लगता है कि मैंने गलती की, मैं मान लेता हूँ। इतने बोलकर मैं नीचे बैठा। किंतु उस समय संघ के क्षेत्र में भी मजदूर संघ, किसान संघ के बारे में या मजदूर संघ और ट्रेड यूनियन के बारे में जानकारी न होने के कारण इस तरह की धारणाएं थी, ऐसा हम देखते। 1963 में हम लोगों ने इंडेक्स नंबर गलत है यह घोषणा की। जो पुरानी यूनियन थी उन्होंने कह रहे इनको क्या पता है, ये नए मुल्ला आ गए, इतने दिन से इंडेक्स नंबर निकल रहा है तो गलत कैसे हो सकता है। किंतु बाद में वो बात सिद्ध हो गई। उस समय एक पहला ही शहर बंद का, बॉम्बे बंद का कार्यक्रम हो, उस समय मधुली में इन्होंने कॉमरेड डांगे से मिलकर घोषणा की कि हम बम्बई बंद करेंगे। गुरुजी ने मुझे पूछा कि भाई ये बम्बई बंद करेंगे, कम्युनिस्टों का काम नीचे जा रहा है, इससे तो कम्युनिस्टों को फ्रेश लीज ऑफ लाइफ मिल जाएगा, तुम्हारे लिए तो और कष्टदायक होगा, तुम क्या करने वाले हो। हमने कहा हम क्या करेंगे, इतने बड़े शहर में उनके पास लाखों की संख्या में मजदूर सदस्य हैं, हमारे पास 12-13 हजार से ज्यादा नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। बोले ठीक है, तुम्हारी संख्या नहीं होगी, लेकिन मधुली में को ये तो समझाइए कि डांगे का प्रभाव कम हो रहा है, उनके साथ मिलकर कम्युनिस्ट का प्रभाव बढ़ेगा। को समझाओ ये तुम कर सकोगे, इतना ही है कि तुम्हारी संख्या कम होने से तुम्हारा व्यक्तिगत अपमान जगह जगह हो सकता है। बोले व्यक्तिगत अपमान सहन करने में, बर्दाश्त करने में क्या आपत्ति है, लेकिन ये युति नहीं होनी चाहिए। तो मैं गया मधुली में के पास, गया मधुली में, पूछा हु आर यू, उनका भारतीय मजदूर संघ का। बोले भारतीय मजदूर संघ बॉम्बे में कहाँ है, हमने कहा कहीं नहीं है, केवल 12-13 हजार आपने उठा सकते। बोले ये मैं भी जानता हूँ, लेकिन बॉम्बे बंदे के लिए फिर हम क्या कर सकते हैं, केवल हिंद मजदूर पंचायत बॉम्बे बंदे नहीं कर सकती। हमने कहा हिंद मजदूर सभा नो आई डोंट सी आई टू आई विद देम, तो मैं उनसे बात नहीं करूंगा। तो मैंने कहा कि मैं HMS के साथ बात करता हूँ, आपकी इजाजत हो तो। बाकी जो यूनियंस है, UTUC वगैरह छोटी बड़ी, सबके साथ।